सूरत अल-बलद तरतीब के अतबार से 90 यानी 90 नंबर की सूरत है। एक रुकू 20 यानी 20 आयात हैं, 82 यानी 82 कलिमात हैं और 320 हरूफ हैं, 320 हरूफ हैं। सूरत अल-बलद का नाम बिल्कुल शुरू ही में कसम के अंदर आता है। मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का के रईसों के घटिया किरदार को हदफ तनकीद बनाना शुरू कर दिया था और वो लोग जो खुल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने पे आ गए थे, अल्लाह ताला ने उनके किरदार को खोला। पूरी सूरत इसका मजमून क्या है, क्या इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को समझ, इंतहाई खूबसूरत सूरत है। दुश्मनी पे तुले हुए लोगों को, जुल्म और ज़्यादती पे मायल लोगों को बताया जा रहा है कि सिर्फ तासुब की वजह से नबी की मुखालफत छोड़ दो और मान जाओ कि ये कुरान एक मुकम्मल ज़ाबते हयात बनने वाला है और तुमने इसके रास्ते में रुकावट नहीं खड़ी करनी बल्कि तुमने इसको मानना है। तो बुनियादी टॉपिक दुनिया में इंसान की और इंसान के लिए दुनिया की सही हैसियत को समझना और ये देखना कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने दो रास्ते खोल दिए, एक खुशकिस्मती का और एक बदबख्ती का, और उसको देखने, उस पर चलने, उस पर कायम रहने के सारे असबाब भी अल्लाह ताला ने फराहम कर दिए। अब ये इंसान की अपनी कोशिश है, अपनी मेहनत है कि वो किस रास्ते पे चलता है और किस अंजाम को पाता है। चंद कस्में पिछली सूरतों की तरह इसमें भी खाई गई। सबसे पहले शहर मक्का और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरने वाले मसाइब और पूरी औलाद आदम की हालत को इस हकीकत पर गवाह बनाया गया कि ये दुनिया आराम के लिए नहीं है। ये दुनिया फूलों की सेज नहीं, इंसान जहाँ मेहनत और मशक्क़त के लिए पैदा किया गया, न कि मज़े उड़ाने के लिए। और सूरत नजम की आयत नंबर 39 लैसलिल इंसान इल्ला मा सा के साथ मिला के इसको अगर पढ़ा जाए तो ये बात पता चल जाता है कि इस दुनिया में इंसान के कामों का असर उसकी आखिरी आरामगाह पे पड़ेगा। आज इस दुनिया में जो कोशिश या मेहनत हमारी है कल आखिरत के मैदान में खेती की सूरत में दिखेगी। और यहाँ ये हकीकत भी खोल दी गई इंसान के लिए, या एक गलत फहमी दूर कर दी गई कि कोई है जो तुम्हारे कामों को देख रहा है और वो तुमसे पूछेगा। फिर अल्लाह सुबहाना ताला ने इसमें एक जाहिलाना रस्म को तोड़ा है और वो क्या था, अपनी ज़ात की नुमाइश के लिए पैसे का खर्च करना। जब आयत आएगी तो हम उस पर बात करेंगे कि किस तरह एक इंसान अपने माल को दिन रात लौटाता है और क़यामत के दिन अफसोस कर रहा होगा कि काश मैं अपनी ज़ात के ऊपर इतना लौटाने की बजाय किसी अच्छी जगह पे लगा देता ताकि आज वो मेरे काम आ जाता। और इसमें आँखों और होंठों की बात भी है। तो शुरू करते हैं अल्लाह से ये दुआ मांगते हुए कि छोटी छोटी सूरतों के बड़े बड़े पैगाम हम अख़ज़ करें और उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर चलें। और जो पैकेज इसमें दिया गया है माल के खर्च करने का, एक मुस्लिम मुआशरे की तश्कील का, उस पर अमल कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, नहीं मैं कसम खाता हूँ इस शहर मक्का की। कई सूरतों की तरह ये सूरत भी ला से शुरू हो रही है और हरफ़ ला इस जगह आना अरब के मुहावरे के मुताबिक भी है और पिछली बात की नफ़ी भी है। सूरत का आगाज़ ये बताता है कि बात कोई और चल रही थी और कहा गया नहीं नहीं जो तुम कह रहे हो वो नहीं है बल्कि उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर की। चारों तरफ मुखालफतें थीं, लोगों ने अपनी मर्ज़ी की बातें आम कर रखी थी। ऐसे वक्त में अल्लाह अपने नबी की ज़ुबान से नहीं नहीं से बात शुरू करवाते हैं, जैसे सूरत क़यामा में थी ला उक्सिमु बियौमिल क़यामा, कि देखो तुमको जो बातें करते हो वो दुरुस्त नहीं, तुम्हारी सोच इस ज़िंदगी के बारे में ठीक नहीं, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो ठीक नहीं है। क्या मक्का वालों का ख्याल था जिसका यहाँ रद्द किया गया? वो ख्याल ये था कि कुफारे मक्का की सोच ये थी कि हम जिस तर्ज़ ज़िंदगी पर चल रहे हैं इसमें कोई ख़राबी नहीं है, दुनिया की ज़िंदगी बस यही है कि मज़े करो, खाओ पियो, थोड़ी सी नमाज़ें पढ़ लो, साल में एक दफ़ा जाके बुतों को भी खुश कर रहो और हज भी करके आ जाओ, और ख़्वाम ख़्वाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोहम्मद इनको बहुत बड़ा बनने का शौक है, आके हमारी ज़िंदगी को गलत करार दे रहे हैं और डरा रहे हैं कि ये भी बात हो पकड़ की है, इस पे भी पकड़ा जाएगा। ये वो सोच थी जिस पे काला उकसिम, नहीं तुम्हारी ये सोच ठीक नहीं। आज भी देखिए जब हम कुरान पढ़ने जाते हैं ना, और जब तफसीर में जाते हैं और डूब के पढ़ते हैं, तो कुछ लोग इसलिए अपसेट हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसी सख्ती करते हैं, कोई नहीं, देखो इतने लोग फलां भी कर रहे हैं, फलां फलां, हम नमाज़ें नहीं पढ़ते क्या, हम भला उमरा नहीं कराते जाके रमज़ान में, और क्या भला हमने हज नहीं किया हुआ जो पिछले सारे गुनाहों की माफ़ी है, और क्या भला हम हकूक़ुल इबाद नहीं देते। बस इतना ही बहुत, बिल्कुल वही सोच जो आज के मादा प्रस्ताना माहौल में हमें अपने इर्द गिर्द दिखती है, उसी को यहाँ पेश किया गया कि तुम जो सोच रखते हो वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि बात यह है कि उकसिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। बलद से मुराद जहाँ मक्का है, खाना काबा का एक नाम, वैसे तो बलद शहर को कहते हैं, हमारे यहाँ उर्दू में एक बड़ा यानी मारूफ नाम है बल्दिया, बल्दिया वालों की तरफ से लोग है वो भी यही है, अरबी से ही निकला, लेकिन यहाँ अल बलद चूँकि आया तो अल लगने की वजह से ख़ास तौर पे ये मक्का का एक नाम है। पीछे हमने मक्का का एक और नाम भी पढ़ा था सूरत आल इमरान में, बक्का बासे, सर तोड़ने वाला, बड़े बड़े सरकशों के सर तोड़ देता है, इसी तरह मक्का तो मारूफ नाम ही है और इसी तरह फिर अलबलद। इस शहर की कसम खाता हूँ, अब इस शहर की कसम खाने की वजह क्या है, ये बात किसी को बताने की ज़रूरत है? मक्का वालों का बच्चा बच्चा जानता था कि एक बयाब हो गया बंजर ज़मीन किस तरह हज़रत इब्राहिम और इस्माइल और हज़रत हाजरा के तवस्सुत से इस तरह आबाद हो गई कि चारों तरफ खुशकी है, लेकिन इस जगह अल्लाह ताला ने इतनी रेल पेल रखी, इतनी दौलत है, लोग आते हैं और जो एक दफ़ा चला जाता है वो दोबारा जाने की ख्वाहिश वहीं से लेकर आता है। इतना प्यारा शहर बिहाज़ल बलद के जिसको नन्हे इस्माइल की एड़ियों के ज़रिए से जमजम के चश्मे को निकलवा कर आबाद किया गया, जो हज़रत इब्राहिम और हज़रत हाजरा की कुर्बानियों का एक मुँह बोलता सबूत है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलद भी है, जहाँ पैदा हुए, कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन अदी से रिवायत है कि हिजरत के वक्त नबी सल्लम जब शहर मक्का को छोड़ रहे थे, एक ख़ास मुकाम पे आए, जब वापस घूम गए तो दोबारा आपको मक्का दिखने लगा, तो आपने फरमाया कि खुदा की कसम ए मक्का, तू सारी ज़मीन में मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और महबूब है, और अगर कोई मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर ना करता तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। हम तो दूर से जाने वाले, दिल में और कई जगहों की मोहब्बतें रखने वाले वहाँ जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। सोचिए जो अल्लाह के नबी और जो वहाँ ख़ानदान था, जो बने पैदा हुए वहाँ रहे, उनको से कितनी मोहब्बत होगी, और खाना काबा की बरकतें किसी के लिए भी ढकी छुपी बात नहीं है, टेंशन फ्री जोन है। सूरत आल इमरान में फरमाया आमीनन, अमन वाला है, दुश्मन भी यहाँ जाता है, बाप का कातिल भी वहाँ मिल जाए तो कोई उस पर हाथ नहीं लगाता, जहाँ का घास पत्ता तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, एक दूध पीते बच्चे की कुर्बानियों की एक ऐसी यादगार है कि वहाँ जाकर सफ़ा और मरवा की सही करते हुए हकीकत में वो माँ बेटा याद आते हैं। फिर इंसान को अपनी कोशिशें कितनी थोड़ी लगती हैं कि हमने क्या किया, हमने तो अभी सहराओं में जाके बसेरे भी नहीं किए, हमने दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों को अपना मस्कन बनाया। इब्राहिम वो थे जो तरक्की याफ्ता मुल्क उस दौर का मुल्क शाम उसको छोड़कर एक सहरा और एक डेजर्ट में आ गए, क्योंकि अल्लाह का दीन कुर्बानियों से फैलता है। तो ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ, क्या व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हालांकि आप दाखिल होने वाले हैं इस शहर में। ये है एक तर्जमा इस आयत का। हिल का लफ्ज़ दो तरह से हम पढ़ेंगे, पहला तर्जमा जो मैंने आपके लिए किया कि आप दाखिल होने वाले हैं इस शहर में, इशारा था फतह मक्का की तरफ कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे, मक्का फतह होगा, तो आज जिस मक्का से आपको निकाला जा रहा है या उसकी कोशिशें की जा रही हैं, एक वक्त होगा कि आप वहाँ दाखिल किए जाएंगे। फतह मक्का की तरफ इशारा था और मुखालफतों का दौर था, लोग पिस रहे थे, दब रहे थे, इसलिए एक दूसरा मफहूम अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद का क्या है कि इस शहर में तो आपको हलाल ही कर लिया है, कोई मारे, कोई पत्थर फेंके, कोई ओझरी फेंके, इन्होंने हर चीज़ आपके नाते से हलाल कर ली है। आपके रास्ते में कांटे बिछाएं, आपको तकलीफें दें, यानी इनको इतना नहीं ख्याल कि ये शख्स जिसने हमें कभी दुख नहीं दिया, जिसने कभी हमारी बात कोई ऐसी नहीं की कि जिसके ऊपर हम पकड़ कर सकें, जिसपे हम इसको रोक सकें, तो क्या ये इस शख्स के ऊपर हाथ उठाने को अपने लिए हलाल करार देते हैं? क्या इनको इस वक्त अल्लाह का खौफ नहीं आता कि एक बेजरर शख्स जो सिर्फ एक अल्लाह की तरफ तुम्हें खलूस के साथ पुकारता है, तुम उस पर इतने इल्ज़ाम लगाते हो? तुमने उसको मजनू कहना हलाल कर दिया, तुमने उसको दीवाना और न जाने क्या कुछ कहना हलाल कर दिया। क्या तुम सोचते हो कि ये शख्स वाकई ऐसा है? एक तीसरा मानी भी है, अंतहल्लुम बिहाजल बलद, और वो क्या है, क्या आप इस शहर में मुकीम हैं और आपके यहाँ रहने से इसकी अजमत में इजाफा हो गया है? एक लफ्ज़ होता है ना हलाल और एक होता है हराम। बस लोग कहते हैं आपने यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शी, सुना भाई जुमला, हमारे घर में आकर आपने हमें इज्जत बख्शी, ये मानिए। अल्लाह फरमाता है इस नबी का यहाँ रहना इस शहर की अजमतों में बरकत डाल रहा है। एक चौथा मानी भी इसका नोट कीजिएगा, और वो क्या है कि हरम ऐसी जगह के जहाँ तलवार तीर नहीं उठाया जा सकता। लेकिन अंतहल्लुम बिहाजल बलद में वही पहला मानी के फतह मक्का की तरफ इशारा है, ये इशारा दे दिया कि कुछ घड़ियाँ ऐसी ज़रूर आएंगी कि जिसमें यहाँ खून खराबा हलाल होगा। और इसकी दलील हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात से मिलती है, आपने फरमाया कि मक्का के अंदर तीर चलाना, तलवार चलाना, ये बिल्कुल शुरू दिन से हराम है। हर नबी के दौर में यह हराम था, हर नबी ने इस शहर की तरफ हिजरत की, उसको हज किया। लेकिन आपने फरमाया कि सिर्फ फतह मक्का की जो वक्त था, उस वक्त अल्लाह ताला ने इस हिल्लत को खोल दिया था, क्योंकि जब नबी सल्लम अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहाँ पहुँचे तो डर था इस बात का कि वहाँ कुछ ना कुछ कत्लो गारत हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा मामला होगा। तो फिर उस वक्त कहा था ठीक है, अगर आज फिर कोई आपके रास्ते में रुकावट डालते हैं तो फिर आप उनसे निपट लें। लेकिन ये भी अल्लाह ताला की शान और रहमत है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चंद लोग जो इश्तिहारी मुजरिम थे, उनके अलावा किसी को जरूरत ही ना हुई नबी सल्लम के सामने आने की और उनका रास्ता रोकने की। तो लिहाजा आपने फरमाया कि सिर्फ उस खड़ी में हिल्लत खुली थी, अब क्यामत तक के लिए हरम को फिर दोबारा उसी हुरमत पे कर दिया गया। इसीलिए आम जगहों पे भी फितना फसाद फैलाना बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। लेकिन अगर आप कोई हरम की हद में जाके इल्हाद करें, मसलन कोई वहाँ जाके दरवाजे बंद करके लोगों को कैदी बना ले, या वहाँ जाके चोरी करे, लड़ाई करे, दिस एंड दैट, इस किस्म के मामले करे, तो उसके ऊपर पकड़ भी ज़्यादा है। फिर किसकी कसम? वालिद व मा वलद, और मैं कसम खाता हूँ बाप की और औलाद की। ये कौन से बाप और कौन सी औलाद है? बाप है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और औलाद है हम सब, यानी पूरी इंसानियत की कसम कर ली। आप कह सकते हैं कि अल इंसान का लफ्ज़ करके पीछे जो बात आई थी ना, यहाँ वालिद और वलद को जमा करके इस सूरत में कर दिया कि सारी जो इंसानियत है, जो आदम की नस्ल जो भी फूटी, उन सब की कसम खाता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी कसमें खाने की? अल्लाह गवाह बनाता है, अल्लाह ताला दिखाता है कि देखो तुम खुद इस बात पे गवाह हो कि जो बात होने वाली है ये होके रहेगी। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा नफ्स तुम्हें इस चीज़ की गवाही देता है कि ऐसा होगा। और इससे मुराद हर बाप और हर वलद भी है। लकद खलक नल इंसान फी कबद, ये है कसम का जवाब। बेशक हमने इंसान को बड़ी मशक्क़त में ज़िंदगी बसर करने के लिए पैदा किया, इंसान कबद में पैदा किया गया। ये जवाब कसम है कि इंसान की तख्लीक इसलिए नहीं कि वो आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करे और इस दुनिया से रुख्सत हो जाए, बल्कि इसकी ज़िंदगी का सफ़ीना तूफ़ानों से नबर्दाज़मा होने के लिए बनाया गया। ख़तरात, मुश्किलात, आजमाइशें ये इस ज़िंदगी में इंसान के साथ साल रहेंगी, और इसका बीज तो डल जाता है माँ के पेट में ही। रहम में मादर में बच्चा जिस तरह सरवाइव करता है, माँ गिरती उठती चलती फिरती लेटती सोती है, कितना बच्चा अपने आप को थका हुआ महसूस करता होगा। हर लम्हे ख़तरों में होता है बच्चा, किस लम्हे भी उस औरत का मिस खैरिज हो सकता है। फिर जब इस दुनिया में आता है कितने जरासीम चिपक जाते हैं। हर बीमारी का मसला, ये वैक्सीन करवा दो, बैक्टीरिया ना हो जाए, वायरस ना हो जाए। फिर नाकामियों के ख़तरे, महरूमियों के ख़तरे, मुखालफों की मुखालफत के ख़तरे, और सबसे बड़ा ख़तरा तो अपने नफ्स का ख़तरा। वमा वर्रियो नफ्सी इन्ना नफ्स लम्मारा तुम बिस्सू। शैतान का खतरा, कदम कदम पे वो दुश्मन इसके ईमान को लूटने के लिए खड़ा होता है। फिर माशरे के खतरे, खानदान के खतरे, दोस्तों के खतरे, और इन्हीं दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर गुजर कर एक बच्चा बड़ा होने लगता है। हम देखें तो हम सब कितने खतरों में, कितनी मुशक्कत है। माँ के पेट से बच्चे का निकलना कितना मुशक्कत अलग है। पीछे भी हमने इस पे बात की कि दूध पीता है बच्चा तो उसके होंठों पे पसीना आ जाता है। मुशक्कत मुशक्कत। फिर छोटे बच्चे रोते हुए स्कूलों में जाते हैं। मुशक्कत। पूरी जिंदगी गुजर जाती है और अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें दुनिया में आने के तरीके से नहीं पता चलता कि तुम क्यों आए हो। अगर ये दुनिया आसाइश और आराम के लिए होती ना, तो फिर हकीकत में बच्चा दुनिया में ऐसे ही आ जाता जैसे थाली में रखी हुई कोई चीज़ आपके सामने पेश की जाए। दरख्त पे फल उगता है ना, बच्चे भी उग जाते हैं, कहीं भी पड़े पड़े मिल जाते हैं। लेकिन नहीं, कबद, ये जो लफ्ज़ कबद है ना, कलेजे को कहते हैं, जिगर। और इस लफ्ज़ को अरब लोग अपनी शायरी में बहुत इस्तेमाल करते थे। हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा जिस उसको मेहनत करनी पड़ती है ना, वो जिगर है, कबद। बहुत सारे काम होते हैं, हर चीज़ वहाँ से गुजर के जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब लोगों का जिगर काम करना छोड़ता है, आज के दौर में जो बीमारी है हेपेटाइटिस सी की जो मारूफ है, उसमें जिगर मुतासिर होता है। और जिस्म की सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, जिगर को चेंज करना बहुत मुश्किल है। हमारे अपनी फैमिली में पिछले साल ही एक वाक्य हुआ कि एक ब्रदर, यंग ब्रदर हैं बच्चे, मतलब मुनासिब उम्र के हैं, तो एकदम तकलीफ़ हुई, पता चला कि उनका जिगर काम नहीं कर रहा। सडनली सब कुछ हुआ, रहते भी शुक्र है किसी ऐसे मुल्क में कि जहाँ पे फौरी चीज़ पकड़ी जाती है। उसके बाद उन्होंने उनके अंदर दूसरा जिगर लगाया है, जिगर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं जिसको, जैसे दिल बदल जाते हैं, जिस तरह गुर्दा बदलते हैं। यकीन करें कि अब अल्लाह करे कि वो कुछ आफियत में होंगे, तकरीबन 6 महीने तक उस जिगर को उनकी जिस्म के साथ सूट करने में मुशक्कतें थी, और कई कई महीने हॉस्पिटल में, और आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। इस तरीके से आप देखिए कि जिगर सेटल होते होते टाइम लगता है। तो अल्लाह कहता है, हमारे यहाँ उर्दू में भी हम कहते हैं ना, जिगर मारना पड़ेगा। पित्ता शायद बोलते हैं लोग अपने तौर पे, वैसे पित्ता और चीज़ होती है, स्प्लीन को पित्ता कहते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन को लोग पित्ता कहते हैं। लेकिन जिगर का जिस्म में बहुत ही ज़रा बात है। आम लोग बोलते हैं ना, अच्छा जिगर वाला है तो बात करें, हौसले वाला है तो बात करें। ये सारे मानी आप इसमें देखें। हज़रत इब्न अब्बास इस पर बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, फरमाते हैं कि इब्तदाए हमल से रहमे मादर में महबूस रहा, यानी बच्चा माँ के पेट में कैद में रहा, फिर विलादत के वक्त की मेहनत और मशक्कत बर्दाश्त की, फिर माँ का दूध पीने, फिर उसके छूटने की मेहनत, पीने की तो मेहनत है, छोड़ने की देखिए, रोते रोते सो जाते हैं, नींद ही नहीं आती उनको, दूध छुड़वा के देखो, माँ की भी नींद ख़राब, बच्चे की भी ख़राब। कहते हैं कि फिर दूध छोड़ने की मेहनत, फिर अपने माश और ज़रूरियात ज़िंदगी फ्राहम करने की मशक्क़त, फिर बुढ़ापे की तकलीफ़ें, फिर मौत की तकलीफ़ें, फिर कब्र की, फिर हशर की, और उसमें अल्लाह के सामने आमाल की जवाबदेही, फिर जजा और सज़ा, ये सब दौर उस पर मेहनतों ही के आते हैं। इंसान को प्यार से पैदा किया गया, लेकिन मुश्किलों के लिए पैदा किया गया। लक़द ख़लक़ना इंसान नफी कबद। अब देखिए, माँ जितना खुश होती है बच्चे के पैदा होने पे, फिर उसी बच्चे को इंजेक्शन भी लगवाती है, फिर उसको सुबह सुबह स्कूल भी छोड़ती है, वो रोता हुआ जाता है। माँ का दिल चाहता है कि बच्चा गर्म बिस्तर से निकलकर सर्दियों की सुबह में जाके बैठ जाए किसी स्कूल में, लेकिन माँ करती है ना, यही है अल्लाह की ज़ात। प्यार करता है अल्लाह ताला अपने बंदों से, लेकिन अब ये तो नहीं कि सोते ही रहो, खाते ही रहो, पीते ही रहो, उठो काम करो, मेहनत करो। जब तुम मेहनत करोगे, देखना अल्लाह ताला तुम्हारी कदर भी कितना करेंगे। इसी तरह बास मुफसरीन कहते हैं कि कोई मखलूक इतनी मशक्क़त नहीं झेलती जितनी मशक्कत इंसान बर्दाश्त करता है, हालांकि वो जिस्म और जुस्से में दूसरे जानवरों की नस्बत बहुत कमज़ोर है। अब देखिए कि हाथी कितना बड़ा है ना, हो सकता है वो वज़न भी ज़्यादा इधर से उधर खींच के मूव कर सके, लेकिन जो दिमाग की कुव्वत है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, इंसान की। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ दोहरा दूँ, जो पहले शायद जिक्र की होगी, कि हमारे यहाँ जहन में फ़ौरन आता है ना जिन लफ्ज़ के साथ, कि बहुत मजबूत होते हैं, तेज़ चल लेते हैं, भाग सकते हैं, बड़े बड़े कदम रखते हुए दिखते हैं, लेकिन एक मिच्योर बालिग जिन के अंदर जितनी अक़ल होती है, इंसान के एक छोटे बच्चे में उतनी होती है, उनमें अक़ल नहीं इतनी होती। अल्लाह ने इंसान को ये सब कुछ देकर सोचने पे मजबूर कर दिया कि देखो मशक्क़त करनी पड़ेगी। दुनिया में मुकम्मल राहत जिसमें तकलीफ़ ना हो हासिल हो ही नहीं सकती, मुश्किलात से कुछ मिलेगा। अल्लाह ताला कहते हैं तैयार हो मुश्किलात के लिए तो फिर सोचो। जान खपाना चाहते हो, इस कॉन्टेक्स्ट के साथ देख लीजिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर मक्का में बैठे मेहनतों के दिन आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुफर के अंधेरे दूर हों तो रोशनियाँ फैलाएं, अगर आप चाहते हैं कि इस मक्का में जहाँ कदम कदम पे बुत रखा हुआ दिखता है, अगर वहाँ की किस्मत बदलने की नीयत है, तो फिर उठिए और मेहनत कीजिए। इसमें अल्लाह के नबी को भी मैसेज है, तबलीग और अल्लाह का पैगाम पहुँचाना और शहादत हक की गवाहियाँ देने के लिए अब मुश्किलात सहने के लिए तैयार हो जाए। क्या हमारे लिए भी इसमें कोई पैगाम है? कितने लोग हैं वो कहते हैं हाँ ये सुख से रह रहे थे, चैन से रह रहे थे, क्या पड़ गए इन कामों में। अच्छे भले अपनी जगह पे बैठे थे, अब क्या हर वक्त नई जगह के ख्वाब और उसकी कुर्बानियाँ। मुश्किलात से कुछ मिलता है, तकलीफें सहने के बाद मिलता है, तो बस कुछ पाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। हत्ता कि आप देखिए कि बच्चा माँ के पेट में भी मर जाता है ना, तो उसको पेट से निकालने में भी बच्चे को भी तकलीफ होती है और माँ को भी होती है। कितने ही अल्लाह ताला ने हमें पैगाम सिर्फ इसे एक लफ्ज़ से दे दिए, इसलिए अब आगे सवाल उठाया गया। ये सवाल मेरे से भी है और आपसे भी और हम में से हर एक इंसान के लिए, क्या यहसबु अल्लै यकदिर अलैहि अहद, क्या वो ये ख्याल करता है कि इस पर किसी का बस नहीं चलेगा, कोई ज़ात नहीं है जो इसको देख रही है। इसके बावजूद के हर चीज़ चारों तरफ इसके ऊपर मुश्किलात पैदा करने वाली है, ख़तरों में घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अकड़ इसकी इतनी है, कहता है कोई नहीं है मेरे से बड़ा, कोई नहीं है जिसके आगे मैं झुकूं, किसी के हुक्म के आगे झुकने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इतना बेबस है, इतना ज़्यादा मजबूर है कि एक सांस भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकता। वक्त का कारून ही क्यों ना हो, फिरौन ही क्यों ना हो, फातह आलम क्यों ना हो, सिकंदर आज़म ही क्यों ना हो, उसको भी इस बात की ज़रूरत है कि वो अपने ऊपर किसी के इख्तियार को माने। अल्लाह की कुदरत की तरफ इशारा है। नहीं तुम सोचते कि अल्लाह ने तुम्हें क्यों पैदा किया, क्या मकसद है? यकूलु अहलकतु माललुबदा, कहता है हाय मैंने ढेरों माल लुटा दिया। यह है एक इंसान की हसरत। लुबदा का लफ्ज़ लबदतुन से है, इसका मानी होता है वो चीज़ जिसको ढेरों में जमा किया जा सके। ढेरों ढेर का लफ्ज़ उर्दू में हम बोलते हैं ना, उसकी तरफ इशारा है। ये क्या इशारा है कि जो दुनियादार लोग होते हैं ना, अपनी दौलत की नुमाइश के लिए हज़ारों लाखों खर्च कर देते हैं, पानी की तरह बहाते हैं, कभी घर कभी कोठियाँ कभी महल्लात तामीर करके अपनी दौलतमंदी का इजहार करना, कभी गाड़ियाँ खरीदना अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ज़रूरत के लिए नहीं तईशात के लिए, शो ऑफ के लिए बड़ी बड़ी दावतें, खाने, शादियाँ, मंगनियाँ, ये सब कुछ क्या है? फ़ख्र के लिए, मुबाहात के लिए। और इस पर डींगे क्या मारते हैं जी, हमने ढेरों माल खर्च किया, हमने इतना पैसा लगाया अपनी बच्ची की शादी पे, कोई और है जो ऐसा कर सकता है? अल्लाह सुबहाना तआला कहते हैं अयहसबु अल्लम यरहू अहद, क्या उसका ये ख्याल है, क्या उसने ये ख्याल किया कि इसको किसी ने नहीं देखा, कोई ज़ात नहीं है जो इसकी इस तरह दौलत के लुटाने को देख रही है, किस तरह अपनी एक एक, एक ज़रूरत पर खर्च करता है, कितनी फजूल खर्ची है, और उसके पड़ोस में कोई गरीब और भूखा मर रहा है, कोई मस्कीन मर रहा है। अपने नाम की बुलंदी पे हज़ारों लुटा दे, अल्लाह के नाम की बुलंदी पे उसको लगाने के लिए सोच पड़े, ये कैसी बात है? क्या उसको अकल नहीं है? अल्लाह ने ये उसको उसके लिए तो नहीं दिए, ये सब कुछ तो अल्लाह ने उसको अपने लिए दिया था कि तुम अल्लाह के नाम की बुलंदी के लिए करो, तुम अल्लाह के उन बंदों तक पैसा पहुँचाओ कि जो एक वक्त दो वक्त के खाने के मोहताज हैं, जो भूखे हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं। क्या तुम ऐसे लोगों को छोड़ के ऐसे लोगों की तरफ जाते हो कि जो सिर्फ तुम्हारे ही जैसे तुमसे भी ज़्यादा खाते पीते, तुम उनको और खिला खिला के खुश होते हो? क्या हो गया इंसान तुमको? क्या तुम्हें समझ नहीं आती कि अल्लाह की ज़ात तुम्हें देख रही है? तकदीर का एक पंजा तुम्हारे सर पे पड़े तो तुम चलते हुए जो हो वो बिस्तर पे बीमार होके लेट जाओ। तुम में से कितने जो आज अर्शों पे बैठे हुए दिखते हैं, कल उसको फर्श पे गिरा दे। उरूज के आसमान पे चढ़ी हुई कौमें आज किधर है, कौमें आद कौमें समूद किधर है? कभी तुम नहीं सोचते इस बात को? हम सिर्फ इन चंद जुमलों पे गौर करें, अनफक्तु मालन लुबदा, ये लफ्ज़ है अहलकतु में, नीचे लिखिए अहलकतु का लफ्ज़ जो है ना असल में अनफक्तु मालल लुबाद है। अगर जुमले का सेंस देखें तो यहाँ ये आना चाहिए था कि अनफक्तु मालल लुबाद, लेकिन अहलकतु कहकर क्या बताया कि तुम खर्च नहीं कर रहे, तुम लुटा रहे हो, तुम हलाक कर रहे हो, उड़ा दिया तुमने माल। तुम्हें अपनी मालदारी पे इतना फख्र था, सारा माल तुमने इस तरह लुटाया जैसे कोई पानी लुटाता है। आपको तक अरबों की आदत थी, सिर्फ किस्सा गों के ऊपर बेलों की सूरत में पैसा लुटा देते थे जब वो इनकी तारीफें करते थे। शायरों को बड़े बड़े इनाम देना, शादी और गमी की रस्मों में सैकड़ों हज़ारों की दावतें कर देते थे। अरबों का ये कल्चर था। जब कभी इनके घरों में शादी होती तो खुलेआम जिसको कहते हैं ना 24 घंटे का बफे सिस्टम खोल देते, जो आता खाता जाता पीता जाता। चलिए अच्छी बात है खिलाना, इसलिए नहीं खिलाते थे कि अच्छी बात हो, इसलिए खिलाते थे कि किसकी बात बड़ी है। फिर फख्र करते, फलां सरदार के घर शादी थी, कितने दिन लंगर खुला रहा, फलां घर के अंदर ये था तो इतना था। फिर इसी तरह जुए में बहुत माल हारते थे, ढेर माल जो था वो जाके वहाँ लुटा देते, और कोई जुए में जीत जाता तो ऊँट पर ऊँट काटता, फख्र तकब्बुर भरा हुआ था, दोस्तों को खिलाता। और इसी तरह मेलों ठेलों का बहुत रिवाज था उस दौर में। बड़े बड़े लश्कर लौ लश्कर होते और मेले लगाते, खाते पीते शौन करते, और वहाँ जाके सिर्फ शो ऑफ के नाम पर बड़ी बड़ी चीज़ें करते, और ये सोच रखते थे कि इस सरदार की शोहरत हो जाए, किसका दस्तरखान बहुत बड़ा, ये बहुत खिलाता है। ये थे वो नुमाइशी खर्चे जिसको कहा गया कि यकूल अहलक तुमा लल्लुबादा। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी तारीफ़ें लोग करते हैं, लोग तो खाएंगे तो तारीफ़ें तो करेंगे, तारीफ़ करानी है तो 2 दिन खिलाना छोड़ दें, लग बता जाएगा। कोई नहीं कहेगा कि मुझे आप पिछले 10 साल से खिला रहे थे, या आपने मुझे इतना दिया इतना लिया। एक दफ़ा ना दे के देख लें, सिर्फ आप एक दफ़ा किसी को एक वक्त का खाना ना खिलाएं, आपके अपने ही बच्चे कहेंगे कि अम्मी आपने तो हमारा कभी ख्याल ही नहीं रखा। वो शौहर जिसकी खिदमत करते हुए आप बूढ़े हो गए, वो कहेंगे तुम मेरे खाने का ख्याल ही नहीं रखती। इंसान तो इतने ना शुक्रे, सिर्फ बीमार हो के अगर बिस्तर पर इंसान पड़ जाए तो घर वाले परेशान होने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया और किस तरह से हो गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम नहीं सोचते।